स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और मैं उन मित्रों को भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस प्रकार के सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है कि हम रेडियो के माध्यम से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ मनन चिंतन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आज जब हम फिर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बातचीत करने पाए, उनके जीवन को छूने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में बुराई का जीवन जी रहे हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता है। पिताजी, आप उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें इस बात का बोध कराएं ताकि वे आपकी ओर लौट आए, उन बुराइयों को छोड़ने पाए। उनके पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम आपके शांति को मांग लेते हैं। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबों को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब प्रभु यीशु ने सातवीं मुहर खोली तब यहोना ने देखा कि परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले सात स्वर्गदूतों को सात तुरहियां दी गई। तब एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लेकर आया, उसे धूप दी गई कि पवित्र जनों की प्रार्थनाओं के साथ उसे सोने की वेदी पर चढ़ाए और उसका धुआं अर्थात पवित्र जनों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गई। स्वर्गदूत ने धूप दान में वेदी की आग भरकर पृथ्वी पर डाल दी। ये पवित्र जनों की प्रार्थना का उत्तर है। इसके परिणाम स्वरूप गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आइए हम देखेंगे पहली तुरही जिससे पेड़ जल गए। यह परमेश्वर का सीधा दंड है। घास से लेकर बड़े बड़े पेड़ों को दंड के कारण जलते हुए देखा जाता है और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दंड के कारण ये पेड़ जल जाते हैं। सबसे पहले वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए कि एक तिहाई वनस्पति ही नष्ट होती है परंतु पृथ्वी पर इसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। परमेश्वर एक महान बैरी आग से काम लेता है। पृथ्वी पर पहला व्यापक दंड जल प्रलय था, अब आग होगी जिसे परमेश्वर साधन बनाएगा। पृथ्वी आग से शुद्ध की जाएगी। जंगल और हरी हरी चारागाहों का कुछ भाग आग से नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी का एक तिहाई भाग विनाश की व्यापकता को प्रकट करता है। एक तिहाई का अर्थ है एक तिहाई वनस्पति की रचना सबसे पहले की गई थी, अतः वही सबसे पहले नष्ट की गई। उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि पृथ्वी को व्यवस्थित करने के बाद परमेश्वर ने वनस्पति की रचना की। मेरे प्रियो, यह वन जीवन पर वास्तविक दंड था। जैसे मिस्र की सातवीं विपत्ति वास्तविक थी। आप देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 18 से 26 पद में। जैसा मैं पहले इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि मिस्र की विपत्तियों और तुरहियों के फूंकने पर आने वाले दंड में समानता है, यह संयोग की बात नहीं है। जी हां, निर्गमन की पुस्तक में आप देखेंगे कि विपत्तियां वास्तविक थी। बाइबल को मानने वाले प्रत्येक विश्वासी को इसका अनुमोदन करना होगा। आपको यह भी मानना होगा कि प्रकाशित वाक्य में व्यक्त प्रत्येक दंड को भी इसी प्रकार स्वीकार करना होगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अर्थ निर्धारण की किसी विधि द्वारा आप एक बाइबल अंश का एक अर्थ निकालते हैं और दूसरे अंश का कोई और अर्थ निकालते हैं, जब तक कि धर्मशास्त्र स्पष्ट न करे कि आप ऐसा करें। मिस्र में ओले बरसने के विषय में लिखा है निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय के 25 पद में, इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए। यह मिस्र का 100% विनाश था। यह पृथ्वी का एक तिहाई भाग होगा। दूसरी तुरही समुद्र को लहू कर देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया और समुद्र के एक तिहाई प्राणी मर गए और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, पृथ्वी का अधिकांश भाग समुद्र है और समुद्र का स्थान दंड पाने में दूसरा है। यह परमेश्वर का सीधा दंड है। भूमि और समुद्र जिस दिन अलग किए गए थे उसी दिन पृथ्वी पर वनस्पति उत्पन्न हुई थी। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आप इसे पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप यहां लिखी गई भाषा पर ध्यान दें। यहोना यह नहीं कहता है कि जलता हुआ पर्वत समुद्र में डाला गया। वह कहता है मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, एक बड़े पहाड़ के समान। इस स्पष्ट अंतर पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि आम अभ्यास यह है कि प्रकाशित वाक्य की सब बातें एक साथ जोड़कर उसे प्रतीकात्मक कहें। आप सोचते होंगे कि इस प्रकार आप बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे, परंतु सच बात तो यह है कि आप आसमान से गिरकर खजूर में लटक जाते हैं। मेरे प्रियो, पहाड़ एक वास्तविक एवं स्पर्शगमय है। आप इसे छू सकते हैं और यह इस बात का प्रकट करता है, जैसा कि हम यर्मिया की पुस्तक 15 अध्याय के 25 पद में देखते हैं, जहां परमेश्वर बेबीलोन के विषय में कहता है, हे नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यही वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। मेरे प्रियो, यह वास्तविक पुंज वास्तविक समुद्र में गिरता है और एक तिहाई समुद्र वास्तव में रक्त रंजित हो जाता है और सब जीवित प्राणियों का एक तिहाई भाग जो समुद्र में है सच में मर जाएंगे। इससे अधिक सीधी और साफ बात और कोई नहीं है। सब उपस्थित राष्ट्रों के वास्तविक जहाजों का भी एक तिहाई भाग वास्तव में नष्ट होगा। यदि हम यूहन्ना को अपनी बात कहने दें तो वह अपनी बात अति स्पष्ट कहता है। मेरे प्रियो, प्रतीकों का खोजना व्यर्थ है। यूहन्ना तो नहीं कहता है कि ये सब प्रतीक हैं। वह अति स्पष्ट कहता है कि समुद्र में एक पहाड़ डाला गया। यह क्या हो सकता है, मैं नहीं जानता। इसके दो कारण है। पहला तो यह कि यूहन्ना ने न तो मुझे और न ही किसी को बताया है, अतः इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दूसरा कारण यह है कि मैं उस समय यहां पर नहीं रहूंगा कि समाचार पत्र में पढ़कर देखूं कि वह क्या था। समाचार पत्रों में और टीवी में तो बहुत सारे अशुभ समाचार आते रहेंगे और महाक्लेश में तो और अधिक आएंगे। यह सब देखने सुनने के लिए मैं तो रहूंगा नहीं, अतः मुझे इसकी अधिक चिंता नहीं है। वरन यह मसीह का त्याग करने वाले संसार के लिए जो परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं एक भयानक त्रासदी होगी। जी हां, यह बात विश्वासी के मन को दुखी करती है, वरन दुख तो और भी अधिक होना चाहिए। इससे हमारे मन पर ही नहीं, हमारे इच्छा और हमारे पांव पर प्रभाव पड़ना है कि हमें इस संसार में परमेश्वर के वचन के फैलाने के लिए अधिक काम करना है। यह हमारा उत्तरदायित्व है, मैं तो कहूंगा गंभीर उत्तरदायित्व है। हम इस दंड को पृथ्वी पर आने से रोक नहीं सकते, परंतु हम परमेश्वर के वचन का प्रसारण करके इस पृथ्वी पर रहने वाली जनसंख्या को कम कर सकते हैं कि उस भयानक समय में कम से कम लोग हों। आगे हम देखेंगे तीसरी तुरही जो पानी को कड़वा करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा हुआ है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। मेरे प्रियो, आज हमारे संसार में प्रदूषण की वृहद चर्चा है और यह एक वास्तविक समस्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ने जल प्रदूषण की ओर इस सितारे का काम आरंभ कर दिया है। मेरा अपना यह विचार है कि मनुष्य विवश हो जाएगा कि संसार में जल को साफ करे यदि उसे जीवित रहना है तो। आत्मरक्षा प्रकृति का पहला नियम है और मनुष्य इस पृथ्वी पर रहना चाहेगा, अतः उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। महाक्लेश में पीने का पानी प्रदूषित होगा या एक तिहाई भाग होगा। मेरे प्रियो, राजस्थान के निवासी पानी की कमी को जानते हैं, रेगिस्तान के लोग पानी की कमी को जानते हैं। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए स्वच्छ जल अति आवश्यक है। हम पानी पर कितना निर्भर हैं यह तब ही पता चलता है जब पीने के लिए पानी ना हो। मुझे मालूम है जब मैं छोटा था तो एक बार अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला गया था और जब हमें प्यास लगी तो हमारे पास पानी नहीं था और हम बेचैन थे। इसलिए मैं जानता हूं कि पानी की कीमत क्या है। मेरे मित्रों, मिस्र से निकलकर जब इसराइली लाल सागर पार करके मरीबा आए जहां पानी कड़वा था, मूसा को आज्ञा दी गई कि वह एक विशेष वृक्ष को काटकर पानी में डाल दे कि वह मीठा हो जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक उल्का पानी में गिरती है जिससे पानी कड़वा हो जाता है। मूसा ने जो पेड़ काटकर पानी में डाला था वह प्रभु यीशु के क्रूस का प्रतीक था। यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है नागदौना। यह पुराने नियम में उपमा स्वरूप काम में लिया जाता था, जैसे इसराइल की मूर्ति पूजा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29 अध्याय के 18 पद में लिखा है। और दूसरी बात हम देखते हैं, आपदा और दुख। यर्मिया की पुस्तक 9 अध्याय के 15 पद में और 23 अध्याय के 15 पद में है और विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 और 19 पद में है। और तब हम तीसरी चीज देखते हैं, न्याय बिगाड़ने वाले के लिए। इसे हम आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यह सितारा वास्तविक है। यह उल्का जहरीली थी जो पृथ्वी के पानी का एक तिहाई भाग प्रदूषित कर देती है। सितारे का नाम संकेत करता है कि मूर्ति पूजा और अन्याय के लिए मनुष्य को दंड दिया जाएगा। आपदा और दुख इस दंड के कारण मनुष्य पर आने वाले प्राकृतिक प्रतिकार हैं। अब हम देखते हैं चौथी तुरही, सूर्य चांद और सितारों पर आपत्ति। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8:12 में लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। मनुष्य इस पृथ्वी पर सृष्टि के जिस एकमात्र अंश पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है वह है सूर्य, उससे कुछ कम वह चांद सितारों पर निर्भर करता है। सृजन कार्य के चौथे दिन ये आकाशीय पिंड उत्पन्न हुए थे, उनकी उत्पत्ति तो पहले ही हो गई थी परंतु प्रकाश चौथे दिन हुआ। अब पृथ्वी के तीसरे भाग पर प्रकाश समाप्त हो गया। परमेश्वर ने बड़ी ज्योति को दिन के लिए और छोटी छोटी ज्योति को रात के लिए सृजा है और ये मौसम के चिन्ह होने के लिए थे। प्रभु यीशु ने कहा था कि महाक्लेश के समय इन आकाशीय पिंडों में विशेष चिन्ह दिखाई देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24:29 में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी हां, इस उथल पुथल के कारण प्रकृति के नियम क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो जाएंगे, परंतु इन सब की सीमाएं निश्चित हैं। प्रकाश और दिन का केवल एक तिहाई भाग प्रभावित होता है। प्रकाश की चमक तीव्रता एक तिहाई कम हो जाएगी। आप ऊर्जा की विनाशिता की बात करें तो मेरे मित्रों, एक दिन ऐसा ही होगा। एक बहुत बड़ी कंपनी के बंद हो जाने के कारण हजारों कर्मी नगर से जाने लगे थे। किसी मनचले ने वहां एक पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा था, अंतिम जन नगर छोड़कर जा रहा है, कृपया बत्ती बुझा दें। परमेश्वर पृथ्वी की बत्तियां बुझाने पर है, तथापि परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था, उत्पत्ति की पुस्तक 8:22 में, अब से जब तक पृथ्वी बने रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मृत्यु दंड को समाप्त करने के प्रयासों के विषय में रॉबर्ट गोवेट की बात बड़ी ही रोचक है। अतः दिन अब तक है, चाहे उसकी ज्योति कम हो गई है। परमेश्वर वाचा के प्रति मनुष्य के अधिकार पर प्रश्न उठाने के अपने अधिकार को काम में लेता है। उसने शर्तें निर्धारित नहीं की हैं। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा खून का बदला खून बहाना नहीं माना जाता है। इस समय हत्यारे को मृत्यु दंड की आज्ञा देना झूठे मानवीय उपकार के निमित्त संसार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। मृत्यु दंड के संबंध में यह एक और दृष्टिकोण है। आज के न्यायाधीन दया दिखाते हुए अपराधियों को हम पर छोड़ देते हैं। मनुष्य इस दिशा में बढ़ता जाता है, परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें व्यवस्था दी कि तुम मनुष्य के जीवन की रक्षा करो। आप हत्यारों को मृत्यु दंड देकर मनुष्य के जीवन की रक्षा करते हैं। मृत्यु दंड अपराध का निवारण करता है। वह जो कहता है कि मृत्यु दंड अपराध निवारक नहीं है, वह रेत में मुंह छिपाए हुए शुतुरमुर्ग के समान है। यदि मृत्यु दंड अभी तक समाप्त नहीं किया गया तो मेरे विचार में ख्रिस्त विरोधी ऐसा अवश्य करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8:13 में लिखा हुआ है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। मेरे प्रियो, चौथी तुरही के फूंके जाने पर पृथ्वी पर हाय और दंड की तीव्रता की घोषणा की गई। अंतिम तीन तुरहियां पहली चार तुरहियों से अलग हैं। वे हाय की पुकार हैं। लिखा है, आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, यदि परमेश्वर तोते और मैने को बात करते हुए या एक दूसरे के निकट बात करते रहने के योग्य बनाता तो उसके लिए उकाब से बुलवाना कठिन काम नहीं है। यह एक अति रोचक बात है कि हमारे प्रभु यीशु ने उकाब से अपने आगमन का संदेश भिजवाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जहां लोत हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जी हां, यह हर्मगिदोन के महायुद्ध के बाद की बात है, परंतु यह सच है कि परमेश्वर अपने कार्य को किसी भी रीति से करता है जिसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी होती है। आज हम सब के लिए क्या ही दुखद बात है यदि हम आज भी परमेश्वर के वचन को सुनकर ना माने, अपने मनों को ना फिराएं, तो उस दिन जो कठिन समय होगा हम कैसे होंगे। मेरे प्रियो, इस संसार के जीवन के लिए नहीं परंतु उस स्वर्गीय जीवन के लिए आप चिंता करें ताकि आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रहें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु से डरें, उसके वचन में बने रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।